पदारथ मन को दुखदाई, हर की भगत नित सुख वरता। सकल पदारथ मन को दुखदाई, हर की भगत नित सुख वरता। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मन के अंदर हम जितनी देर भी जागते हैं, कोई ना कोई संकल्प, कोई ना कोई कल्पना जन्म लेती रहती है और हम उसको जानते रहते हैं। एक सेकंड के लिए भी मन की चंचलता ये बंद नहीं होती। लगातार ठीक उसी प्रकार यदि हम समुद्र के किनारे खड़े हों, इतने ही दिन तक वहां खड़े रहें, लहर का आना, किनारे से टकराना कभी बंद नहीं होता। निरंतर एक लहर टकराती है दूसरी, उसके पीछे तैयार हो जाती है। जिस प्रकार समुद्र के पानी की गति है, उसी प्रकार हमारे मन की गति। और हर संकल्प कोई ना कोई हमारे लिए मुसीबत कह लें या सुख का स्रोत कह लें, हर कल्पना या मुझको दुखी करती है या मुझको सुखी करती है। वो कल्पना किस प्रकार की है ये इस पर निर्भर करता है। लेकिन एक छोटे बालक के मन की गति देखें तो जिस वस्तु से भी वो रोने से चुक जाए, वो वस्तु माँ के लिए सुखदाई प्रतीत होती। बच्चा इससे सुखी हो जाएगा, इसका रोना बंद हो जाएगा। लेकिन जो भी बच्चों को पालते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, बच्चे का रोना कभी बंद नहीं होता। बस कुछ देर की बात है, चुक जाता है, लेकिन दूसरी कल्पना उसके अंदर जन्म ले लेती है, आगे फिर रोना शुरू कर देता है। तो हमारे मन की गति या बच्चे के मन की गति दोनों एक जैसी है, लेकिन मुझ में और बालक में एक अंतर। बालक अपने मन की गति को समझ नहीं सकता, देख नहीं सकता। मैं अपने मन की गति को समझ भी सकता हूं और देख भी सकता हूं। मेरे मन में क्या संकल्प उठ रहा है मैं उसको जान लेता हूं। कि जानने का काम किसका है? मेरा है, यानी बुद्धि का है, या यूं कहें कि जीव का। तो जिस संकल्प को पूरा करने में मुझको ये पता है कि इससे मुझे खुशी मिलेगी, तो बुद्धि उसका निर्णय कर देती है कि इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए प्रयास शुरू किया। और जिसको बुद्धि रिजेक्ट कर देती है, नहीं इसको पूरा किया तो मुसीबत में फंस जाएंगे, तो फिर बुद्धि कोशिश करती है कि उस संकल्प को मन से हटा दिया जाए या उसको रोक दिया जाए, या उठता भी है तो उसको पूर्ण ना किया जाए। तो मन की गति तो समुद्र के पानी की तरह से है, जिसमें तरंगे निरंतर उठती रहती है। उसी प्रकार मन के अंदर भी वासना की तरंगे, संकल्प की, विकल्प की तरंगे लगातार उठती रहती हैं। अब आप बताइए, यदि मेरी बुद्धि की कोई ट्रेनिंग ही नहीं है तो फिर मेरा जीवन किस पर आधारित होगा? मेरा जीवन मन पर आधारित। तो मन पर जिसका जीवन आधारित है उसको अज्ञानी का जीवन कहा जाता है। लेकिन निर्णय तो सभी करते हैं, एक डाकू है निर्णय वो भी करता है, एक दूसरे का सामान छीन कर वो अपने उपयोग में ले लेता है, वो भी बुद्धि का, उसकी बुद्धि का भी निर्णय होता है। लेकिन बुद्धि का निर्णय कौन सा ठीक होता है, ये कौन सिखाएगा? संसार में तो सब एक ही चीज के पीछे लगे हुए हैं, उनकी बुद्धि का एक ही निर्णय है। जिस मन के संकल्प को, या यूं कह लें कि जिस मन की इच्छा को पूर्ण करने से सुख प्राप्त होता हो, उस क्रिया को कर लेना चाहिए। तो इस बुद्धि को आप क्या कहेंगे, इसको विकसित बुद्धि कहेंगे या अविकसित बुद्धि कहेंगे? जो भी व्यक्ति बुद्धिमान कहा जाता है समाज में, एक ही बात कहेगा वो कि जिससे भविष्य में दुख प्राप्ति की संभावना ना हो, जीवन किसी भी मुसीबत में फंसने वाला ना हो, ऐसी यदि कोई मन में इच्छा है जो मुझे सुख पहुंचाती है उसको पूरा कर लेना चाहिए। लेकिन यदि हम अध्यात्म की बात करें, ईश्वर की बात करें, गुरु की बात करें, वहां वो कुछ दूसरा निर्णय दे रहे हैं। हमारे संसारियों से के निर्णय से वो दूर दूर तक वो मैच कर ही नहीं रहा। तो वाणी उसी निर्णय की बात कर रही है, सकल पदार्थ मन को दुखदायी, हर की भगत नित सुख वरता। अब ये कैसा निर्णय, सकल पदार्थ मन को दुखदायी, शायद हम में से है किसी एक का भी ये निर्णय नहीं होगा कि सारे पदार्थ मन को दुखदायी हो गए। हम में से एक का भी निर्णय नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ये वाणी है, ये ईश्वर का सीधा हमारे लिए मार्गदर्शन है, हमारी बुद्धि में वहम हो सकता है, हमारी बुद्धि में विकार हो सकता है, ईश्वर में तो विकार की संभावना नहीं है, वहां तो कोई वहम नहीं है, वहां जो भी निर्णय होगा वो अटल होगा और केवल ठीक होगा। ठीक का मतलब जिसमें मेरे भविष्य का कल्याण है, जिस कल्याण को प्राप्त करके मुझको पछताना नहीं पड़ता, मानसिक बेचैनी से मुझको छुटकारा मिल जाता है, तो उस कल्याण की बात ये वाणी हमको सिखाना चाहती है। इसीलिए इसके निर्णय संसारियों के निर्णय से बिल्कुल उल्टे होते हैं। संसार का कोई मनुष्य ये बात कभी कह ही नहीं सकता कि सकल पदार्थ मन को दुखदायी। तो यदि साइंटिफिक एनालिसिस किया जाए या आध्यात्मिक तरीके से इसका विश्लेषण किया जाए, तब एक निर्णय शास्त्र देते हैं कि हमारे पास पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख से देखते हैं, कान से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, नासिका से सूंघते हैं, त्वचा से सर्दी गर्मी का एहसास करते हैं और जिह्वा से रस लेते हैं। ये पांच ज्ञान इंद्रियां हैं जिसके द्वारा हम सुख भी भोगते हैं और दुख भी भोगते हैं। लेकिन पांच ज्ञान इंद्रियों के पांच विकार हैं, ये अध्यात्म विद्या हमको सिखाती है। उसका नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो संसार के सुख जितने भी भोग ले हम, लेकिन उसका जो आउटपुट है या उसका जो प्रोडक्शन है, उससे जो फल की प्राप्ति है, वो पांच विकार की है। सारे संसार के सारे पदार्थ आप भोग लीजिए, लेकिन आपको परिणाम रूप में पांच विकार की प्राप्ति होगी। ये विश्लेषण यदि मैंने नहीं सीखा तो बताइए मैं इन विकारों से कैसे बच सकता हूं। जितना पैसा कमाऊंगा, जितना पैसा कमा के अपनी मन की इच्छा पूर्ति के लिए या जरूरतें पूर्ति करने के लिए साजो सामान इकट्ठे करूंगा, लोगों से संबंध बनाऊंगा, साधन जुटाऊंगा, परिणाम तो सबका एक ही होगा। ये पांच ज्ञान इंद्रियां उन पदार्थों को, उन चीजों का भोग करेंगी और भोग रूप में जो आपके पास रस इकट्ठा होगा, जो परिणाम इकट्ठा होगा, वो पांच विकार का होगा। या वो चीजें काम का विकास करेंगी आपके अंदर, या क्रोध का विकास करेंगी, या मोह का, या लोभ का, या अहंकार का। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांच चीजों का रिजल्ट आपको मन की इच्छा पूरी करके प्राप्त होता है। अब सारा जन्म आप बड़े ठीक तरीके से जी रहे हैं, किसी की तो नकल करके जिएंगे आप, किसी से तो सीख कर जिएंगे, लेकिन संसारिक जीवन इस पांच विकार से ऊपर का होता ही नहीं है। इस चीज का निर्णय हमारी बुद्धि में नहीं है। इसलिए वाणी जब ये बात सिखाना चाह रही है तो ये साधारण बात नहीं है, ये संसार से बिल्कुल अलग है। लेकिन अलग होते हुए भी आपका कल्याण, आपका भला इसी बात को सीखने में। इसलिए मैंने यदि संसार के निकल करके जीवन अपना लिया तो कितना भी बड़ा इंसान संसार में क्यों ना बन जाऊं, लेकिन मुझको पता नहीं है मैं पांच विकार में फंस जाऊंगा। और पांच विकार का मतलब होता है डिजीज, और डिजीज हमेशा मनुष्य को बेचैन करती है, उसके स्वास्थ्य को गिराती है। स्वास्थ्य कौन सा, आपका जो बुद्धि का स्वास्थ्य है, ये गिर जाता है। बुद्धि का निर्णय आपका डिफेक्टिव हो जाता है। कहते ना कहावत, सावन के हरे को, सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई पड़ता है। सावन के मौसम में चाहे तो हरियाली होती है, इसलिए उस वक्त यदि कोई अंधा हो जाए तो वो यही समझेगा कि चारों तरफ हरियाली हरियाली। उसी प्रकार हमारा जो मन है वो पांच विकार की इच्छाएं पूरी करता है, पांच विकार के संकल्प उसमें जागृत होते हैं, उसको हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो बुद्धि का जो निर्णय है, बुद्धि का जो तवाजन है या बैलेंस है, वो बिगड़ जाता है। तो मेरे निर्णय इस प्रकार के होते हैं, यही कहिए संसारिक निर्णय होते हैं, जिसका जो आउटपुट है, जिसकी जो फल की प्राप्ति है, वो काम क्रोध लोभ मोह को अहंकार को बढ़ाने वाली होती है। इसीलिए सकल पदार्थ मन को दुखदायी, हर की भगत नित सुख वरदायी। तो एक अलग पदार्थ आ गया हरि, हर की भगत नित सुख वरदायी। तो अब बताइए ये बात आपको संसार में सुनने को मिलेगी या सत्संग में सुनने को मिलेगी? ये अनोखी बात है या नहीं? संसार से बिल्कुल हटकर। तो यदि इस विज्ञान को मैंने विज्ञान के तरीके से सीखने की कोशिश नहीं की, यदि मैं यही समझता रहा मैं जानता हूं प्रभु का नाम लेना चाहिए, मैं जानता हूं झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं जानता हूं किसी को सुख पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, ये तो बातें मैं जानता हूं, सत्संग में जाकर मैं क्या करूंगा? तो ऐसे साधारण बुद्धि वालों की कल्पनाएं होती हैं। जो पूरा जन्म मानव का जन्म मुझको इस बात से मिला था कि मैंने इस विज्ञान को सीखना है, इस विज्ञान को सीखने के लिए, इसके अनुसार चलने के लिए मानव मुझको बनाया गया था, उसकी मैं जरूरत ही नहीं समझता। तो मैं मोटी मोटी दो चार बातें सीख लेता हूं और समझता हूं मैं बुद्धिमान हो गया और मेरा काम चल गया। तो याद रखिए, जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं, इस विज्ञान की बारीकी बढ़ती चली जाती है, इसकी गहराई बढ़ती चली जाती है, और जब बुद्धि उस गहराई को स्वीकार कर लेती है, अर्थात वो सीख जाती है, तब आपके मन के जो संकल्प हैं उनको बदलने की सामर्थ्य इस बुद्धि के अंदर यानी जीव के अंदर आ जाती है। तब आप सोचते हो कि गुरुदेव की बात क्यों कर रहे हैं कि सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्संजन ये मनुष्य के वास्ते जरूरी चीजें, इसके बिना मनुष्य का जीवन विकारी जीवन है, पतित जीवन है, तो संसार में दुख की कमाई करके और भविष्य में अगले जन्म में भी दुख भोगने के लिए वो पैदा होता है। याद रखिए, ये साधारण सी बात नहीं होती, वाणी शब्द साधारण से होते हैं लेकिन उसका राज बहुत गहरा होता है। इसलिए याद रखें कि हर की भगत नित सुख वरदायी, केवल हरि की भक्ति है जो तेरे मन के अंदर, बुद्धि के अंदर सुख पैदा कर सकती है। उस सुख का नाम ही आनंद है, उस सुख का नाम ही चैन है, उस सुख का नाम ही शांति है। ये इंद्रियों का सुख नहीं है, जो मिठाई खाते वक्त तो बड़ा सुख महसूस हो रहा है कि जब उसको हजम करने का नंबर आया तो दुख महसूस हो रहा है, क्या करूं पेट में एसिडिटी हो रही है, पेट में गैस बन रही है, पेट फूल रहा है। खाते समय सुख है, भोगते समय फिर दुख। इसीलिए आगे वो क्या कह रही है वाणी, ध्यान से सुनो। दुर्गंध मिट गई विखयों की रसना, साचा शब्द सुगंध चित वसना। दुर्गंध मिट गई विखयों की रसना, विखय का मतलब क्या है, विष या विषय। तो विषयों की रसना हम है ना, हमारी ज्ञान इंद्रिया भी है, क्या भोगती है वो विषयों की रसना को भोगती है। जितने भी भोग पदार्थ हैं उनको विषय कहते हैं, कहते हैं कि दुर्गंध मिट गई विषयों की रसना, साचा शब्द सुगंध चित वसना। जो इस अध्यात्म विद्या को सीख जाता है और उसकी बुद्धि के निर्णय वही हो जाते हैं जो वाणी के निर्णय है या गुरु के निर्णय है, तब वो इस प्रकार का जीवन जीवन अपनाता है कि मन के अंदर रसना किसकी बैठी हुई है, विषयों की रसना बैठी हुई है, विषयों की रसना भरी हुई है, विषयों का रस भरा हुआ है, तो इसको वाणी दुर्गंध कह रही है। आप कहीं भी जाइए, यदि वहां दुर्गंध आती हो तो आप कैसा मुंह सिकोड़ लोगे? नाशिका से दुर्गंध का एहसास होता है ना, तो मैं कितना बेचैन हो जाता, यानी जीव या यूं कह लें बुद्धि कितनी बेचैनी महसूस करते हैं। क्या वो एक मिनट भी उस दुर्गंध के वातावरण में रहना पसंद करेगी? कभी नहीं। उसको पता है ये दुर्गंध है, ये बुरी चीज है, इससे दूर रहना चाहिए। याद रखिए, यदि हमने इस बात को सीखना है तो गुरु के जीवन को हमको देखना पड़ता है। महाराज जी का बचपन से जीवन देख लीजिए, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से जब वापस आ रहे हैं, अभी बचपन ही है उनका, दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ते में जहां खाली जगह मिलती है, एकांत मिलता है, वहां बस्ता रखते हैं और प्रभु की याद में लीन हो जाते हैं। और बाकी बच्चे घर जाएंगे, खेलेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, उनके तो उमंग होती है, दौड़ दौड़ के घर की ओर भागते हैं, लेकिन वो भी बालक है, उसकी बुद्धि का निर्णय सतत निर्णय है, इसीलिए वो अंतर्यामी प्रभु की याद का रस ले रहा है, उसकी शांति उसको प्राप्त हो रही है और उसमें जीवन की वो सफलता समझ रहा है। और उन भोग पदार्थों को जिसकी तरफ मन आकर्षित हो रहा है अन्य बच्चों का, वो उसको छोड़े बैठा हुआ है, उसमें उसको जिंदगी की बेचैनी, जिंदगी की बर्बादी, जिंदगी का फेल्योर नजर आ रहा है। तो इसीलिए दुर्गंध मिट गई विखयों की रसना, साचा शब्द सुगंध चित बसना। तो गुरुदेव किस सुगंध की कमाई कर रहे हैं? वो साचा शब्द की कमाई कर रहे हैं, जो उनके अंदर जागृत है, जो उनके अनुभव में ऑलरेडी है। तो बचपन से ही उनके अंदर में अंतर्गत में है वो प्रभु, कैसे जागृत है, कैसे अनुभव में है, क्योंकि पिछले जन्म में वो ये क्रिया करके आए हैं। और जब उनका शरीर शांत हुआ तो मन यही है, बुद्धि यही है, ज्ञान इंद्रियां भी वही है, लेकिन संस्कार मन के अंदर अलग तरीके के पिछले जन्म में इकट्ठे किए थे, जो बचपन से ही इस जन्म में उनको प्राप्त हो गए, जो बचपन से ही उनको संसार के दुख से दूर रख रहे हैं और आंतरिक सुख, अंतर्यामी का सुख उनको प्रदान कर रहे हैं। जिस सुख को पाकर उनकी बचपन में ही समाधि लगने लगी थी, 9 वर्षीय आयु में उन्होंने जंगल में जाना शुरू कर दिया, रात को लेट आना शुरू कर दिया था घर पर, तो उस बालक के अंदर क्या है? मेरे अंदर भी मन है और बुद्धि है, उस बालक के अंदर भी मन है और बुद्धि, तो वही ज्ञान इंद्रियां जो मेरे अंदर है। तो इतना बड़ा भेद कहां से आ गया कि वो तो शांत है और बच्चे घर जाने के लिए बेचैन है, वो तो दौड़ लगा रहे हैं किसी का घर पहुंचे तो चैन मिलेगा, सुख मिलेगा। तो यदि मैंने गुरु को जीवन को बारीकी से नहीं देखा, उसके द्वारा प्रकट वाणी को मैंने विज्ञान की तरीके से नहीं सीखा, तो मेरी बुद्धि का निर्णय भी वैसा ही बना रहेगा जैसा मेरे परिवार में, मेरे समाज में अन्य लोगों का बना रहता है। इसलिए मैं भी पैसा कमाऊंगा, भोग इकट्ठे करूंगा और बेचैनी मन में कमाकर संसार से बेचैनी लेकर मैं विदा होगा, तो अगला जन्म फिर उसी दुर्दशा में होगा जिसकी कमाई मैंने इस जन्म में इकट्ठी की। इसलिए ध्यान रखें, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, इसलिए इन शब्दों का वो जरा नोट करें कि हम क्या कहते हैं और वाणी क्या कह रही है। वो कह रही है, दुर्गंध मिट गई विखयों की रसना, साचा शब्द सुगंध चित बसना। ये सुगंधि की कमाई मैंने करनी है, मैंने वो पदार्थ इकट्ठा करना है इस मन के अंदर जो मुझको सुगंधी दे, तो वो पदार्थ है ईश्वर का नाम। इसलिए वो कहते हैं कि अमृत नाम मन चुगे दिन राती, सकल विकार से भई उलासी। तो रिजल्ट क्या निकला? एक ही रिजल्ट निकला कि अमृत नाम मन चुगे दिन राती। जिस प्रकार पक्षी दाना चुगता है, इसी प्रकार मन जो है जब प्रभु नाम को याद करता है, बार बार उसको रिपीट करता है अंदर, तो कहते हैं ये उसका दाना है जो दिन रात जब वो मन चुगता है तो सकल विकार से भई उलासी। तो यही मन संसार के 5 विकारों को छोड़ देता है, 5 ज्ञानेंद्रियों के भोगों को छोड़ देता है और फिर ईश्वर के आनंद का, ईश्वर की सुगंध का इस देह के अंदर रसपान करता है, जिसका सागर इस देह के अंदर मौजूद है। तो मैंने यदि सत्पुरुष की बात को गहराई से नहीं समझा और इसी प्रकार संसारियों के निकल करते करते मैं जीवन व्यतीत करता रहा, तो मैं ये दुर्गंध की कमाई करूंगा और मुझको ईश्वर रूपी सुगंध कभी मिलेगी नहीं और जीवन मेरा खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये तो बिगड़ा ही, अगला जन्म भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि मन के अंदर जो संस्कार बनाए हैं वही संस्कार मुझको बचपन से ही अगले जन्म में प्राप्त होंगे, जो अगले जन्म को ही बर्बाद कर देंगे। इसलिए वर्तमान जन्म को बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए इस विज्ञान को सीखना बहुत जरूरी है। तो गुरु के मानने से या गुरु पर विश्वास से मैं इन बातों को ज्यादा महत्व देता हूँ, वाणी को महत्व देता हूँ, तब जाकर इस विज्ञान को मैं सीखकर जीवन सफल करता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम।